मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 28 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में जो आपदा प्रबंधन जो होता है उसके जो तत्व होते हैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा, लेकिन आइए इससे पहले एक दो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। मैं आज के अपने इस ऑडियो लेक्चर के न्यूज़ सेक्शन की शुरुआत COVID-19 से नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि COVID-19 सुनते सुनते आप लोगों को भी थोड़ी सी ऊब होने लगी होगी और आप लोगों में से हो सकता है कि कुछ थोड़े से नाराज भी हो रहे हों, तो आज मैं उससे शुरुआत नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज जिसे शुरुआत कर रहा हूं वो भी कोई बहुत रुचिकर प्रसंग नहीं है, और वो है टिड्डियों का हमला। टिड्डियों का हमला, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि जो टिड्डियां जो होती हैं, टिड्डियों का दल कह लीजिए, उसने हमारे देश के पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग पर जबरदस्त हमला कर दिया है टिड्डी, और उससे जो हमारी फसल है वो जबरदस्त रूप से चौपट हो रही है। दोस्तों, ये जो टिड्डियां हैं इनके बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली बात तो यह है, मजेदार बात, कि इनका जो वजन होता है वो केवल 2 ग्राम होता है और वो 2 ग्राम ही फसल खाते हैं। देखिए 2 ग्राम सोच के देखिए, है ना, लाइफ मैनेजमेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे दिखाई दे। इनका वजन 2 ग्राम है, ये खाना भी 2 ग्राम ही खाते हैं, लेकिन लेकिन दोस्तों इनका जो दल होता है, जैसे 1 किलोमीटर आप जमीन ले लीजिए, 1 किलोमीटर खेत है और 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जितने टिड्डी होंगे, लगभग 15 करोड़ टिड्डियां होंगी सामान्यतः इनके झुंड, 15 करोड़ टिड्डियां 1 किलोमीटर के दायरे में, इसमें ये इतना अनाज खा जाएंगे जितना कि एक दिन में 35,000 लोग खाते हैं, और ये भी ये बकायदे भी आधे घंटे के अंदर अंदर चट कर जाएंगे। मतलब इनकी ताकत समझिए, केवल 2-2 ग्राम करके ये कितना अनाज खा जाते हैं, कल्पना करके देखिए। दोस्तों इनका जो सफर भी होता है एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर का होता है, 100 से 150 किलोमीटर ये सफर कर सकते हैं। ज्यादातर इनकी जो प्रजातियां हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि जहां 200 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है वहां टिड्डियों की प्रजातियां ज्यादातर पाई जाती हैं। भारत में इस तरह की जो समस्या है 1959 से 62 में आई थी, जिससे बहुत सारी हमारी फसल खराब हो गई, और अभी भी आप देख रहे हैं कुछ राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन पर इन टिड्डियों ने बहुत जबरदस्त रूप से हमला किया है। इन्हें दूर भगाने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग घटनाएं भी आपको अखबारों में पढ़ने को मिलती होंगी। वैसे तो पेस्टिसाइड सबसे अच्छा इलाज है ही, पेस्टिसाइड्स के जरिए इनको भगाने की कोशिश हो रही है और सफलता भी मिल रही है, लेकिन कहीं होते हैं नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कहीं थालियां बजाई जा रही हैं, ये सोच करके कि इन आवाजों से ये जो टिड्डियों के जो सैनिक हैं या टिड्डी रूपी जो सैनिक हैं ये यहाँ से भाग जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और हमारे यहाँ जो टिड्डियाँ जो प्रवेश करते हैं, ये टिड्डी के दल, ये पाकिस्तान की ओर से प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों कुछ मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इन टिड्डी दलों के बारे में बताए हैं। इनका चूंकि सीधे इम्पैक्ट हमारे कृषि व्यवस्था पर है और इस बार फिर से एक जबरदस्त हमला देखने में आ रहा है, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे लगता है कि आपके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों आइए अब मैं जो हमारे आपदा प्रबंधन के तत्व हैं उन पर थोड़ी सी बात करूँ। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो अम्फन चक्रवाती तूफान सुपर साइक्लोन आया, खासकर आंध्र प्रदेश, उधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तो उतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ है, और इस मामले में उड़ीसा को एक तरह से मॉडल स्टेट माना जाता है, खासकर राष्ट्रीय आपदाओं की व्यवस्था करने के मामले में। लेकिन इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर विधिवत तरीके से आऊं, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो NDRF हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसके अभी जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक मिस्टर SN प्रधान, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्होंने कहा है कि अब ये जो इस तरह की जो राष्ट्रीय आपदाएं हैं ये आएंगी, और पहले की तुलना में ज्यादा आएंगी, इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो क्लाइमेट चेंज है उसका सीधा संबंध इस बात से है, राष्ट्रीय आपदाओं से है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो अब के कारण जो आपदाएं आएंगी वो तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें अपने कुछ व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने तीन चार जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है और सिविल सर्विस में कोई ताज्जुब नहीं कि इसी को आधार बना करके मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। तो देखिए, उन्होंने तीन चार क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि जो राज्य सरकार हैं, उन राज्य सरकारों को चाहिए कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये इनके टॉप प्रायोरिटीज में हों। ये नहीं कि ठीक है जब आएगा तब देखेंगे और करेंगे, नहीं, ये टॉप प्रायोरिटीज में होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण कही है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना चाहिए, मतलब उनमें सुधार किए जाने चाहिए। किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए इसके बारे में उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। पहली बात तो यह है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह होता है ना, जो तार वगैरह बिजली के खंभे गाड़ करके खींचे जाते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो तार हैं ये अंडरग्राउंड होने चाहिए, यानी कि जो विद्युतीकरण है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए, भूमिगत होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे मालूम है कि भूमिगत तार बिछाने में ज्यादा खर्च आता है, लेकिन जो आपदा की जो चुनौतियां हैं उसे देखते हुए बहुत जरूरी है कि अंडरग्राउंड वायरिंग की जाए। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई जो उन्होंने कही कि गांव में जो मकान बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कच्चे मकान हो या पक्के मकान हो, वो इस तरीके के बनाए जाने चाहिए जो इन आपदाओं के प्रति रेजिलिएंट हो या सुनम्य हो, यानी कि जब इस तरह की आपदाएं आए तो वह उन्हें बड़े आराम से झेल लें। जैसे जापान, आप देखिए जापान में इतने भूकंप आते हैं, लेकिन वहां जो मकान बनते हैं वो अब इस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं कि अगर भूकंप के झटके लग भी रहे हैं तो बड़े आराम से वो जो मकान है वो भूकंप के झटकों को बर्दाश्त कर लेते हैं, टूटते फूटते नहीं है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, और स्पेशली उन्होंने कहा कि खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने चाहिए। स्पेशली उन्होंने जोर देकर के कहा है कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में तो जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल रेजिलिएंट होने चाहिए, यानी कि सुनम्य होने चाहिए, इस तरीके के होने चाहिए कि अगर आपदाएं आ भी जाती हैं तो उन्हें झेल सकें, बर्दाश्त कर सकें, और जो विध्वंस होता है, जो नुकसान होता है, जो टूट फूट होती है, वह भी कम से कम। तो दोस्तों, ये जो तीन चार पॉइंट हैं इस साल के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम हुए, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और इसी को आधार बना करके मैं आज आपसे आपदा प्रबंधन के जो मेन जो एलिमेंट होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उसके बारे में बहुत थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि विस्तार के साथ बातें करने के लिए वक्त नहीं है। खासकर जब हम आपदा प्रबंधन के तत्वों की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके तीन चरण होते हैं। और देखिए, इस विषय को मैं इसलिए भी ले रहा हूं कि अभी आपने देखा कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो प्रबंधन किए गए वो उन प्रबंधनों की खबरें अखबारों में आ रही हैं, है ना। तो वो जो खबरें हैं वो तो व्यावहारिक पक्ष को दिखा रही हैं कि ये किया गया। अगर इसका सैद्धांतिक पक्ष आपकी जानकारी में होगा तो बड़े आराम से आप उन व्यवहार को इन सिद्धांतों से जोड़ लेंगे, तो ये जो टॉपिक है आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि अब इसके आपदा प्रबंधन के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, वो है, पहला है जोखिम को कम करना, रिस्क डिडक्शन, यानी कि आप जो इससे संबंधित जोखिम है उस जोखिम को कम करें, यानी कि अभी आपदा आएगा तब आप कुछ करेंगे नहीं, अभी सूचना मिल गई है कि इस तरह की आपदा आने वाली है, तो अब आप देखिए कि जब आपदा आ जाएगी उस समय आप कैसे इसके जोखिम को कम कर सकेंगे। तो आपने देखा है कि किस तरीके से जैसे ये पता लगा कि अम्फन तूफान आने वाला है तो वैसे ही वहां से लोगों को निकाल करके दूसरे स्थानों पर ले जाया जाने लगा और दूसरी व्यवस्थाएं की जाने लगी। आपदा आने से पहले एनडीआरएफ की टीमें वहां तैनात कर दी गई और व्यवस्थाएं कर दी गई। तो ये होता है जोखिम को कम करना, रिस्क डिडक्शन। जो सेकेंड स्टेज है वह है क्विक रिस्पॉन्स, त्वरित कार्यवाही। अब बकायदे आपदा आ गई है तो आपदा अब जब आ गई है तो आप तुरंत कार्यवाही करना शुरू करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, इस पर मैंने बातें भी की थी कि किस तरह से आप फायर ब्रिगेड ले आते हैं, एम्बुलेंस की टीमें आ जाती हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, और जो बचाव दल हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, ये सब के सब एनजीओज हैं, ये सब के सब आ जाते हैं और तेजी के साथ बचाव कार्य शुरू हो जाता है। जो स्थानीय समुदाय है वो भी मदद करता है। तो इस तरीके से अब आपदा आ गई है तो आप क्विक रिस्पॉन्स, त्वरित कार्यवाही करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपदा आई और चली गई, तूफान आया और चला गया। अब हम थर्ड स्टेज पर हैं। अब अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, इस स्टेज को हम कहते हैं रिकवरी। अब जो हमने खो दिया है कैसे हम उन्हें फिर से हासिल करें, तो ये जो रिकवरी है, इस रिकवरी के फिर से तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है राहत, रिलीफ, यानी कि जो लोग हैं उनको आप रिलीफ प्रोवाइड करिए। कुछ को भोजन नहीं मिल रहा है, कुछ को हाथ पैर टूट गए हैं, कुछ बीमार पड़ गए हैं, तो उनको पहले आप रिलीफ दीजिए। इसके बाद है रीहैबिटेशन, पुनर्वास, उनको उनकी जगहों पर वापस भेजने की कोशिश कीजिए, पुनर्वास। और इसके बाद है फिर रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, यानी कि जो भवन टूट गए हैं, सरकारी बिल्डिंग्स टूट गई हैं, इनका आप फिर से निर्माण करें ताकि वहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम फिर से काम करने लगे। तो मित्रों, खासकर इस विषय को जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ मैंने इसलिए चुना ताकि अब जो घटनाएं या अब जो कार्यवाहियां आप अखबारों में पढ़ेंगे उन्हें इन सिद्धांतों से आसानी के साथ जोड़कर देख सकें। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: विभा मिश्रा, गोपाल द्विवेदी, रोहित चौधरी नैनीताल उत्तराखंड से, सुनीता सोमरार, पंकज सिंह झुंझुनू राजस्थान से, और अतुल चौहान नई दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।